تفسير: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی، بینات روشن صاف. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اب یہاں پر جو ہے کفار مکہ کے معجزات کے مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم یہ اور یہ اور یہ کام کر کے نہ دکھا دو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، پہلے پیچھے بھی آپ نے کچھ جواب پڑھے، اب پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے فرعون کو 1 یا 2 معجزات نہیں 9 معجزات دیے گئے تھے، لیکن وہ معجزات دیکھ کر بھی قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا. 9 نشانیاں کیا تھی جو دی گئی تھی؟ 9 آیات بینات، وہ کیا تھی؟ آپ سورت آراف میں پڑھی چکی ہیں، نمبر 1 عصا جو اجدہا بن جاتا تھا، نمبر 2 ید بیضا جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، نمبر 3 جادوگروں کو جو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا، نمبر 4 ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا ہو جانا، نمبر 5 پھر یکے بعد دیگرے طوفان، 6 ٹڈی دل، نمبر 4 سرسریاں، نمبر 8 مینڈک، اور نمبر 9 خون کی بلاؤں کا نازل ہونا. تو جب بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 9 نشانیاں انہوں نے پیش کی، اور نشانیاں بھی کیسے تھی؟ آیت بینات، بالکل صاف صاف کھلے کھلے معجزے انہوں نے جو ہے وہ دیکھے، تو معجزے دیکھنے کے بعد، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد، بنی اسرائیل نے، فرعون نے، ان کی قوم نے جو ہے وہ کیا کہا؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پس اب تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ سامنے آئیں 9 نشانیاں ان کے، تو کیا ہوا تھا؟ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے یہی تو کہا تھا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، کہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. تو ایمان لانے کی بجائے فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جس پر جو ہے وہ جادو کیا گیا ہے. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا کہ آپ جو ہیں ایک سحر زدہ آدمی ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ پر ایمان نہیں لایا جا سکتا. مسحورہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر جادو کیا گیا ہو، جو دیوانہ ہو، جس کی عقل مت ماری گئی ہو. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ، اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لَقَدْ عَلِمْتَ، تو خوب جانتا ہے، مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ، کہ نہیں نازل کی یہ نشانیاں الا مگر رب السماوات والارض بصائر، کہ یہ جو بصیرت افروز نشانیاں ہیں یہ آسمانوں زمین کے رب کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی. تو اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا جو اعتراض تھا کہ آپ پر جادو ہوا ہوا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ تجھے خود پتا ہے کہ آسمانوں زمین کے پروردگار ہی نے یہ 9 معجزات جو ہیں بھیجے ہیں، اور یہ 9 کے 9 معجزات کیسے ہیں؟ بصائر ہیں، بصیرت کی نشانیاں ہیں، یہ بڑی حکیمانہ نشانیاں ہیں. تو جس رب نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین بھی اللہ کی قدرت کی، اللہ کی کبریائی کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، تو उसी रब ने जो है ये निशानियां भी पैदा की हैं। वह इन्नी लाजुन्नु का या फिर अउनु मसबूरा, और मेरा ख्याल ये है कि फिरौन तू जरूर एक शामत ज़दा आदमी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि तू जो है एक शामत ज़दा आदमी है। यहाँ पे मसबूरा लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है फा बा रा, इसके मानी होते हैं जख्म का खराब हो जाना और हिलाकत होना, हिलाक होना या किसी का हिलाक हो जाना। आमतौर पे जब जख्म किसी का खराब हो जाता है तो ऐसा शख्स हिलाकत के करीब होता है, फिर वो शख्स जो है वो मौत के करीब होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन से कहते हैं कि ए फिरौन, मैं ये समझता हूं कि तू जो है वो शामत ज़दा आदमी है, कि मैं सहर ज़दा नहीं हूं बल्कि जरूर तेरी शामत आने वाली है। क्यों? इसलिए कि तू अल्लाह की निशानियों का इनकार कर रहा है। अल्लाह की निशानियों को देखने के बाद तू कह रहा है कि ये मौजे नहीं है बल्कि सहर है। तो निशानियां देखकर जब किसी की आंखें नहीं खुलती तो फिर अल्लाह की हुज्जत उस पर पूरी हो जाती है और उसकी हिलाकत का वक्त जो है वो आ जाता है। फअरादा, बस इरादा किया फिरौन ने अन यस्तफिज़हुम मिनल अर्दी, तो फिरौन ने ये इरादा किया अन यस्तफिज़हुम, अन यस्तफिज़हुम जो है इसका रूट है फे जे जे, और इसका फज़ा के मानी होते हैं बेकरार कर देना, अकल का, किसी की अकल का खो जाना, बेकरार करना और अकल का खो जाना। अब आप देखें कि बेकरार करने के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं, फरागा, जजिया, फजिया, करूबा, हला, इतर्रा, और जो इस तफज्जा है ना ये आखिरी दर्जा है, फज्जा, किसी के होश उड़ा देना, किसी को घबराहट में मुब्तला करके निकाल देना, किसी को हल्का बना देना, किसी को जलील जानना। तो जब किसी को घबराहट में मुब्तला कर दिया जाए तो क्या होता है कि वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पे फिरौन ने जो है वो इरादा किया अय्यस्तफिज़हुम मिनल अर्दी, कि वो उनको जमीन से बेकरार करके जलील करके निकाल दे। और हुम की जमीर किसके लिए आई है? मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए। तो फिरौन की ये प्लानिंग थी, अल्लाह की क्या प्लानिंग थी? फअग़रक़नाहू, फिर अल्लाह कहते हैं कि हमने उसको गर्क कर दिया, वह मम्माहू जमीहा, और जो उसके साथी थे उनको भी। तो फिरौन को और उसके साथियों को इकट्ठा समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया। तो अहले मक्का को बताया जा रहा है कि तुम्हें कुछ याद है कि तुम मोहम्मद के साथ क्या सलूक कर रहे हो? और यहाँ पे फिरौन की, मूसा अलैहिस्सलाम की और बनी इसराइल की कहानी सुनाकर उनको ये बताया है कि फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को जो है वो जमीन से निकालना चाहा था। तो फिरौन का और उसके साथियों का क्या अंजाम हुआ? तुम मोहम्मद को और मोहम्मद के साथियों को अहले मक्का, मक्का की सरजमीन से निकालना चाहते हो तो सोच लो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वकुलना, और हमने कहा मिम्बादे ही, उसके बाद, यानी फिरौन और उसके साथियों के डूबने के बाद हमने कहा, किससे कहा? ले बनी इसराइला, बनी इसराइल के लोगों से, उस्कुनुल अर्दा, कि अब तुम जमीन में बसो, फैजा जा अवादुल आखिराती जे न बिकुम लफीफा, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। तो अब आप देखिए, देख लीजिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने बनी इसराइल से कहा था कि तुम सरजमीन में आबाद हो जाओ। कौन सी सरजमीन में? मिस्र की सरजमीन में। और कब तक आबाद रहोगे? जब तक आखिरत नहीं आएगी, जब आखिरत आएगी तो हम सबको जमा करके जो है हिसाब किताब के लिए ला खड़ा करेंगे। तो जेना जा, इसका मतलब होता है आना, और इसके साथ पीछे इसके बाकी प्रेपोजिशन आ जाए तो लाना। जेना बेकुम, हम ले आएंगे तुमको लफीफा। लफीफा जो है लाम फाफा, एक चीज को दूसरी चीज से मिला देना, मुद्गम करना, लपेट देना, इसी से लिफाफा होता है, मलफूफ होता है, किसी चीज का छुपा हुआ होना, लिपटा हुआ होना। तो फिर उनको जो है वो मोहलत दे दी गई कयामत के दिन तक। वबिल हक की अंजलना हु, वबिल हक की नजल। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा किया है, और वो हकीकत ये है, फरमाया कि ये कुरान जो है इसको हमने हक के साथ नाजिल किया है, और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है। कुरान अजीमुशान मोजा है, हमने इसको हक के साथ नाजिल किया और वो हक के साथ यहाँ पर नाजिल किया गया। इसके मानी क्या है? यहाँ पे एक बड़ी अहम हकीकत जो है उसकी तरफ इशारा किया गया है। मानी ये है कि कुरान जब जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आप तक भेजा गया तो रास्ते में कोई कमी बेशी, कोई तब्दीली और अमेजिश नहीं इसमें की गई। इसको लाने वाला फरिश्ता, उसकी सिफात क्या है? शदीदुल कुवा, अल अमीन, अल मकीन, अल मुताउ फिल मलाइल आला। तो ये सिफात थी जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो कुरान लेकर आते थे, और जो है जब आप तक कुरान पहुंचाया गया वही के जरिए नाजिल हुआ, तो इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं हो सका। वमा अरसलना का इल्ला मुबशिरन व नजीरा। और ये कुरान हमने तुम्हें इसलिए देकर जो है वो भेजा है, तुम्हें हमने इसके सिवा किसी मकसद के लिए जो है वो मबूस नहीं किया, क्या सवाई इसके कि तुम जो है बशारत दे दो किनको, जो ईमान ले आए, व नजीरा, और डराओ किनको, जो ना माने, इनकार करें। तो प्यारी बहनों, आप देख लें कि कुरान मजीद जो है इसमें दो तरह के रवैये, दो तरह के अंजाम जो है वो बताए गए हैं। और पैगंबर की जिंदगी का मकसद क्या था? मुबशिर व नजीरा, डराना नाफरमानों को और खुशखबरी देना अताअत गुजारों को। और यही आज एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। तो कुरान में जन्नत और जहन्नुम का जिक्र साथ साथ चलता है, ईमान लाने वाले और इनकार करने वालों का जिक्र भी साथ साथ चलता है। तो बाज़ुकात क्या होता है कि बाज लोग दर्स व तदरीस में सिर्फ डराते चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस बताया गया है कि डराया भी जाए और साथ ही खुशखबरी भी दी जाए। जबरदस्ती नहीं हो सकती, जैसे बाज लोग जो है वो किसी को समझाने के लिए, औलाद को ही समझाने के लिए सख्ती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, या उस्ताद करता है। तो सख्ती या जबरदस्ती से हदायत नहीं किसी को दी जा सकती। तो जिसको, जो खुद अपनी हदायत न चाहे, पैगंबर भी उसको हदायत नहीं दे सकते। अब आयत नंबर 106 में बताया जा रहा है कि कुरान को थोड़ा थोड़ा करके जो नाजिल किया गया, इसके फवायद क्या हैं? वह कुरआनन फरकनाहू लितकराहू अलन्नासी अला मुक्स। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, ये तकरा हूं ताकि आप इसे सुनाएं अलनासी लोगों को, अला मुक्सिन ठहर ठहर कर, व नजल ना हूं तंजीला, और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज नाजिल किया है। पहले मक्का का एक एतराज ये था कि अल्लाह ताला को अगर कुरान भेजना था तो पूरा कुरान इकट्ठा क्यों नहीं नाजिल किया? आखिर ये ठहर ठहर कर थोड़ा थोड़ा क्यों भेजा गया? ये ऐसी है जैसे कोई इंसान सोच सोच कर कोई बात बनाए। तो इसका जवाब पहले आप सूरत नहल की आयत नंबर 101, 102 में भी पढ़ चुकी हैं, और यहाँ पे भी दोबारा इसका जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके मौका ब मौका बतदरीज नाजिल किया, और इसका जो है वो मकसद और फायदा ये था ताकि लोगों को जो जरूरत हो, जो मुश्किल हो, जो लोगों के हालात हों, तो मुख्तलिफ हालात के मुताबिक अल्लाह ताला आयात को नाजिल करते, जिसमें مومنین کی رہنمائی بھی ہوتی، ان کے ایمان پختہ ہوتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور وہ مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے قوت حاصل کرتے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں یہ بھی سہولت تھی کہ لوگوں کو عمل کرنے میں اور یاد کرنے میں مشکل نہیں تھی. بیک وقت سارا اکٹھا دے دیا جاتا تو لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا، اس کو نافذ کرنا، اپنی زندگی میں جاری کرنا یہ مشکل ہو جاتا. تو یہاں پہ اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ مکس یہ اہم لفظ ہے، اس کا روٹ ہے میم کاف سا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرے رہنا، ٹھہر ٹھہر کر، وقفہ دے دے کر. تنزلناہ تنزیلا، اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اکٹھا نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. قل آمنو بہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس پر ایمان لاؤ، او لا تومنو، یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ کتاب تو پہنچ گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اس کو اتار دیا ہے، اور اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ایمان لائیں، لیکن اگر لوگ ایمان لاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی لاتے تو آپ اس کی کچھ پرواہ نہ کریں. تو آپ کیا کریں، آپ صاف صاف لوگوں کو یہ بات کہہ دیں، قل آمنو بہی او لا تؤمنو، کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلى علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دین کا علم دیا گیا تھا، جیسے منصف علماء جو اہل کتاب میں سے تھے، یہاں پہ اہل کتاب میں سے جو ان کے علماء تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبل ہی، وہ لوگ جن کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے علم دیا گیا تھا، ان کا حال کیا ہے، اذا یتلا علیہم، کہ جب ان کے سامنے یہ قرآن سنایا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرونا، خرا یخرو، خارارا روٹ ہے، معنی ہے آواز یا اضطراب کے ساتھ کسی چیز کا گرنا. تو آواز کے ساتھ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. لل اذقانی، اذقانی جو ہے اس کا روٹ ہے زال قاف نون، اور یہ ٹھوڑی کے لیے آتا ہے، ٹھوڑی، اور اس کی جمع ہے اذقان، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. کہاں گرتے ہیں، سجدے کے لیے، جیسے وہ سچائی کا، حقانیت کا جو ہے وہ یقین کرتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے، فوراً جو ہے جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو وہ سجدے میں جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ٹھوڑی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، زقن، زقن زال قاف نون واحد ہے، اذقان اس کی جمع ہے، اور آپ نے سورت یاسین میں بھی یہ لفظ پڑھا ہوگا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہیا الی الاذقان، اذقان وہاں بھی آپ نے پڑھا ہے. تو خدا ترس لوگ ہیں کہ وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ویقولون، وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہی ہونا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں کیا گیا تھا، وہ وعدہ تو پورا ہو کر رہنا تھا، پیغمبر کو تو آنا ہی تھا. کیا کہتے ہیں، ان کا انا وعد ربنا لمفعولا، کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا کہ پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، کیونکہ پچھلے صحیفوں میں اس کا ذکر ہو چکا تھا. یخرون للاذقان، और वो मुंह के बल, ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं, यबकूना रोते हुए। बका यब की, बा काफिया जो है ये इसका रूट है और इसके मानी है रोना। बका ये लफ्ज जो है ये रोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है ना ऐसे ही जो है वो किसी का रोना, और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि अल्लाह की आयात जो है उनके दिलों के अंदर एक इनकलाब पैदा करते हैं। वो अल्लाह के खौफ से, वो अल्लाह को याद करते हुए है जो है वो रोने लगते हैं, वो अल्लाह से डरते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी ये सिफ्त बताई जा रही है कि अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की आयात को सुनकर उनकी ये हालत हो जाती है कि वो जो है वो गिर पड़ते हैं। फयखिरूना लिल अज़कानी यबकूना फयजीदुहुम खुशुआ। और जब वो मुंह के बल रोते हुए गिरते हैं तो आयात को सुनकर उनका खुशू और बढ़ जाता है। अब आप देखें कि यहां पर उनकी एक और सिफ्त का जो है वो जिक्र किया जा रहा और इसके मानी क्या है खुशुआ के, ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। ये लफ्ज जो है इसका रूट है खा शीन आयन, और ये लफ्ज डरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डरने के लिए कुरान में 12 लफ्ज आए हैं और खशा जो है इसका तीसरा दर्जा है। ऐसे डर को कहते हैं जिसके असरात दिल के अलावा जिस्म के अज़ा पर भी हों, जवारे पर भी नुमाया होने लगे। अब आप देखें कि जब इंसान का दिल नरम होता है ना तो बाजू के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं। खाशियतुन अबसारुहुम वखशातिल अस्वात वजूहुन यौमाइज़िन खाशिया। तो कुरान में ये लफ्ज जो है ये आंखों का डर की वजह से झुकना, आवाजों का पस्त हो जाना और दिलों का नरम पड़ जाना, ये सब चीजों के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये इतने अच्छे लोग हैं कि अल्लाह की आयात सुनकर ये मुंह के बल सजदे में गिरते हैं, रोते चले जाते हैं, आयात को सुनकर इनका खुशू और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अहले किताब के जो उलमा हैं उनकी तारीफ की गई है, और वो लोग फिर क्या कहते हैं, वो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा रब जो है वो अपने वादे को पूरा करके रहेगा, हमारा रब जो है अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। तो अहले किताब के सवालहीन का तर्ज अमल बताया जा रहा है। फिर आयत नंबर 110 में कुरान पर एक एतराज का जो बहाना था उसका जिक्र किया जा रहा है। कुल कह दीजिए उद्उल्लाह अविदुर्रहमान, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कहिए खा अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे बेहतर है। तो अल्लाह कहो या अर्रहमान कहो, तो जिस नाम से भी पुकारोगे वो नाम जो है वो बेहतर है। मुशरकीने मक्का के लिए अल्लाह का जो सिफ्ती नाम था रहमान या रहीम, रहीम या रहमान, उससे वो नामानूस थे। और जब मुशरकीन ने रसूल अल्लाह की जबान से रहमान और रहीम के अल्फाज सुने तो कहा हमें तो ये कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो और खुद दो माबूदों को पुकार रहा है, यानी रहमान को भी पुकारता है। तो यहां पर जो है ये फिर आयत नाजिल हो गई कि इनसे कहो कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। फिर उसके साथ फरमाया अय्यन, अय्यन का लफ्ज जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और अय्यन जो है ये किसे कहते हैं, जैसे होता है ना अय्यू, अय्यू जो है ये कौन से के लिए इस्तेमाल होता है, और यहां पर है कि अय्यन अय्यु जो भी, मा कुछ, तो जो कुछ तद ऊ तुम पुकारोगे, फलहुल अस्मा उल हुस्ना, तो उसके नाम है सब अच्छे, तो अल्लाह को जो अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है तुम उनसे पुकारो। इसके माने ये हैं जैसे जो अल्लाह ने अपने नाम बताए हुए ना, अल्लाह को उन नामों से पुकारा जाए। और अल्लाह के जात एक है अल्लाह, लेकिन अल्लाह के कई नाम है। अल्लाह का जाती नाम एक है अल्लाह, और सिफाती नाम है बहुत से, सिर्फ 99 नहीं है, 99 से ज्यादा है जो हमें कुरान और सुन्नत से जो है वो मिलते हैं। तो फलाहुल अस्मा उल हुस्ना, तो उसके नाम है सब अच्छे। जैसे बाज लोग अल्लाह मियाँ कहते हैं, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला, अल्लाह करीम, अल्लाह रहमान, हय्युल कयूम, तो जो अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हमें कुरान और हदीस से मिलते हैं, अल्लाह को उन नामों से पुकारना चाहिए। वला तजहर भी सलाती का, और ना आवाज बुलंद करो अपनी नमाज में, वला तो खाफित बिहा, और ना आहिस्ता करो इसमें। तो नमाज जब पढ़ो ना ऊंची आवाज से और ना ही आहिस्ता आवाज से, फिर किस तरह से पढ़ो? वक्त तगी बेन जाले का सबीला, और तलाश कर इनके दरमियान का रास्ता। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बल्कि औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। तो मक्का में जब रसूल अल्लाह या दूसरे सहाबा नमाज पढ़ते तो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते, कुफार शोर मचाने लगते और बाज औकात वो गालियों की बुछार शुरू कर देते। तो उस पर हुक्म दिया गया कि ना इतने जोर से पढ़ो कि कुफार सुनकर हजूम करें, और ना इतना आहिस्ता पढ़ो कि तुम्हारे साथी भी ना सुन सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हजरत बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह को नमाज पढ़ते देखा। हजरत उमर रजी अल्लाह जो थे वो ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह आहिस्ता आवाज में पढ़ रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा से पूछा, एक से पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से कि आप आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस अल्लाह को सुना रहा था वो अल्लाह तो आहिस्ता बात को भी सुनता है। और अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि मैं सोतों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों के दरमियान में आ जाओ, ना बहुत ऊंचा ना बहुत आहिस्ता, बल्कि दरमियानी आवाज में जो है वो पढ़ना शुरू करो। तो यहाँ पे भी यही तालीम जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो है वो दी गई है कि अगर बहुत ऊंचा पढ़ा जाएगा तो मुशरिकीन सुनकर गालियां बकेंगे, बिल्कुल आहिस्ता पढ़ा जाएगा तो जो मुक्तदी नमाजी वगैरह हैं उनको भी सुनाई नहीं देगा, तो मियाना रवि इख्तियार की जाए। वकुल, और कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। और ये एक हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है। तो यहाँ पे अल्लाह की शुक्रगुजारी सिखाई जा रही है, और बेहतरीन शुक्रगुजारी क्या है कि अल्लाह की अतात इख्तियार की जाए। क्यों अल्लाह की हम्द और तारीफ की जाए? अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, वो जिसने ना किसी को अपना बेटा बनाया, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की, और नहीं है इसके लिए कोई शरीक बादशाही में, वलम यकुल लहू वलीयुन, और ना ही उसके लिए कोई दोस्त है। आमतौर पे दोस्त क्यों बनाया जाता है? मिनज़ुल दाल लाम लाम, और दोस्त होने की वजह ये होती है कि कोई कमजोर होता है, तो जुल जो है ये कमजोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई आजिज होता है। तो कहा कि अल्लाह कमजोर नहीं है, अल्लाह आजिज नहीं है कि उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई मददगार हो। तो जाल लाम लाम हकीर, जलील, आजिज, नातवान को कहा जाता है। वकबिर हु तकबीर, और उसकी बड़ाई बयान करो बड़ा जानकर। तो अल्लाह जो है ये बहुत बड़ा है, और उसका इंतहाई कमाल क्या है कि उसकी जो है वो बड़ाई बयान की जाए। आप देखिए सूरत बनी इसराइल की इब्तदा सुबहान अल्लाह जी से हुई, उसके मानी क्या है कि अल्लाह की तस्बीह की जाए, वो तमाम अयूब और नकायस से पाक है, और खात्मा जो है वो अल्लाह की हमदो सना पर हुआ कि अहले मक्का जो थे वो शिर्क करते थे और अल्लाह कि हम की जाए, वो अल्लाह ना किसी जिसका कोई बेटा है, ना जिसकी कोई जो है वो बादशाही में कोई शरीक है, और ना ही उसका कोई दोस्त है, क्योंकि आमतौर पे दुनिया में दोस्त इसलिए होते हैं ताकि वो मुश्किल वक्त में जो है वो मदद करें। तो फरमाया कि अल्लाह तो इन सारी चीजों से पाक है। तो फरिश्तों को अहले अरब अल्लाह की बेटियां कहते थे, और यहूदियों ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का बेटा कहा, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो अपनी जात में मुकम्मल है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, आप ये बयान कर दें कि मेरा रब इससे बुलंदो बाला है कि उसके अंदर कोई नक्स, ऐब, मोहताजी या आजजी जो है वो पाई जाए। और आखिरी आयत क्या है कि अल्लाह की जो है वो हमद बयान की जाए। तो ये हमद कैसे आप बयान करेंगे? इसके लिए हमदिया हमें बहुत सी दुआएं मिलती हैं, और हमें वो दुआएं जो है वो पढ़नी चाहिए। और सबसे मुख्तसर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज के बाद भी जो तस्बीह फातिमा है उसमें सुभान अल्लाह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह भी है, और अल्लाह अकबर भी है। तो अल्लाह की हमदो सना बयान करना ये क्या है कि इस तरह से जो है इंसान जो है अपने अमल को कमजोर समझता है, अपने कसूरों का इतराफ करता है, और सारी बड़ाई जो है वो अल्लाह के लिए जो है वो मुकरर करता है। और यही तालीम जो है हम मुसलमानों को दी गई है। ये जो आखिरी आयत है सूरत बनी इसराइल की, आयत नंबर 111, इसको मुफस्सरीन आयते इज्जत भी कहते हैं। कुल अल्हम्दुलिल्लाह से ये शुरू होती है। ये मुसनद अहमद की रवायत है कि इस आयत में ये हदायत है कि कोई इंसान कितनी ही अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह और तहमीद करे, अपने अमल को इसके हक के मुकाबले में कम समझना और कसूर का इतराफ करना इसके लिए लाजिम है। हजरत अंस रजी अल्लाह ना फरमाते हैं कि बनी अब्दुल मुतलिब में जब कोई बच्चा जबान खोलने के काबिल हो जाता तो उसको रसूल अल्लाह ये आयत से कहा देते थे, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक दिन मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था। आपका गुजर एक ऐसे शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्ता हाल और परेशान था। आपने पूछा, तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? इस शख्स ने अर्ज किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर दिया। आपने फरमाया, मैं तुम्हें चंद कलमात बताता हूँ, वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी। और वो कलमात ये हैं, तवक्कल तू अल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। तो फिर इसके बाद जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ लेकर गए, उसको अच्छे हाल में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया। उसने अर्ज किया, जब से आपने मुझे ये कलमात बताए थे मैं इनको पाबंदी से जो है वो पढ़ता हूँ। तो प्यारी बहनों, ये थी सूरत बनी इसराइल। और सूरत बनी इसराइल जिसमें जो है वो तीन बातें खास तौर पर जो थी वो आपके सामने रखी गई थी, तंबीह, तफहीम और तालीम। इस सूरत में एक तरफ मुश्किलात के तूफान में जो है वो मजबूती के साथ अपने मौकफ पर जमने का तरीका बताया गया है, और दूसरी तरफ जो है ये भी बताया गया है कि कुफर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, और तीसरी तरफ ये अहम बात आपको याद रखनी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल को, सूरत बनी इसराइल को हर रात को सोने से पहले सूरत बनी इसराइल और सूरत जुमर इसकी तिलावत किया करते थे। और ये है वो सूरत जो अकीदे को मजबूत करती है, जो आखिरत की याद दिलाती है और जो हमें बताती है कि फला और खुसरान जो है उसका दारो मदार किन चीजों पर है। यहाँ रहते हुए मैं और आप अपनी इंफरादी जिंदगी और जो इज्तमाई जिंदगी है उसे किन उसूलों के मुताबिक जो है वो गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए और उन लोगों में शामिल कर लें जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।